नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि जिस किसी को भी अपने प्रश्न पूछने हो कृपया व्हाट्सएप या सुपर चैट के माध्यम से अवश्य पूछे। साथ में आपको यह भी कहा है कि हमने ज्वाइन बटन नहीं दे रखा है और उसके स्थान पर हमने सब्सक्रिप्शन प्लान्स दे रखे हैं। आप कृपया सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और उनका आपको डिटेल पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज फिर से हम एक बार बात कर रहे हैं लाफेयर केजरीवाल के बारे में और थोड़ा एक बिगर डायमेंशन लेंगे। स्वागत कर रहे हैं हम विजय सरदाना जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी।
प्रणाम सर।
अब ये जो केजरीवाल का जो पूरा का पूरा अफेयर है सबके सामने आ गया है, तो हाई कोर्ट ने उसका विवेचन भी कर दिया है, ऑन मेरिट कर दिया है। और अब जो बड़ा प्रश्न उठ रहा है और वो ये है कि जो पूरी की पूरी बात होती है एक भ्रष्टाचार के बारे में, वो भ्रष्टाचार जो है और उसके विरोध की जो बात है वो हमारे कोर्ट्स जो हैं वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिसकी वो दिन रात बात करते रहते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के सिद्धांत को यहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे? वैसे तो वो कहेंगे कि भाई हम पब्लिक मोरालिटी नहीं देखते, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखते हैं। तो पब्लिक मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के चक्कर में ये केजरीवाल को फ्री पास दे रहे हैं क्या कि वही वो सीएम बना रहे, जेल में बैठा काम करता रहे?
सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जजेस का ये भी कहना है कि देखिए, वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है, जहां तक बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, जिसमें आप फ्रीडम की बात करते हैं, नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, ये सब बातें आ जाती है। दूसरा आता है सबसे बड़ी बात कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जिसके कारण हम अपने आप को स्वतंत्र देश कहते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है रूल ऑफ लॉ। ये तीन एस्पेक्ट्स को जोड़ के हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें तो ये चीजें सामने आती। अब जहां तक बात है कि केजरीवाल साहब रिजाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, करप्शन सही है या गलत है, अब ये बात आ जाती है ओवरऑल, जिसको हम बोलते हैं बार बार कि भाई सोशल मोरालिटी की आप बात कह सकते हो, पॉलिटिकल मोरालिटी कह सकते हो कि ये उचित नहीं है। और अब समाज को सोचना है कि क्या उचित है क्या नहीं है, तो जजेस ने तो यहां अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कह दिया जी देखिए, हमें तो जो कानून की किताब में लिखा हुआ है हम तो वही करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड ऑनेस्टी इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब अगर मैं ये कहूं कि साहब ऑनेस्टी इज ऑप्शनल इन इंडिया, इज नॉट ए यू नो इल एक्ट, तो आप अगर उस हिसाब से अगर देखना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस को, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। तो इसी तरह से बाकी जो चीजें हैं सर, ये सब बातें वहीं आती हैं कि अगर हम हर चीज अक्षर सैद करना चलेंगे तो केजरीवाल भी तो यही बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है कि आपको इस्तीफा देना है तो मैं क्यों दूं। और ये बात घूम फिर के बार बार आ जाती है। तो इस बात को भी हमें समझना है। इस पे
जो है ना, देखिए ये मुझे तो डबल स्टैंडर्ड लग रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी अभी जो केजरीवाल ने पिटीशन दायर की वो रिट पिटीशन में गए, उन्होंने बजाय बेल के एप्लीकेशन लगाने के उन्होंने रिट पिटीशन लगाई, और रिट पिटीशन में जो फाउंडेशन थी अरेस्ट की उसको ही चैलेंज कर दिया। आप जानते हैं, आप तो कोर्ट में रहते ही हैं, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अगर उसको रिट जुरिस्डिक्शन में लाना है तो आप उसका वायरस चैलेंज कर दो, या आप जो है उसको 14 और 19 और 21 में लेके आ जाओ। लेकिन जो जजमेंट दिया है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जज ने कही, और मेरे ख्याल से वो सही भी थी, कि भाई हम पॉलिटिकल मोरालिटी से कंसर्न्ड नहीं है इलेक्शन टाइम पे, कि वेंडेटा है या क्या है, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट, वी आर कंसर्न्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू आर प्राइमा फेसी गिल्टी। तो ये उन्होंने एक तरफ तो ये बात कह दी, तो और दूसरी तरफ जिन जज साहब के पास जाते हैं वो कहते हैं कि साहब की नहीं, ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एस्पेक्ट डिस्कस ही नहीं करते। ये आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा होगा, तरह तरह की चीजों को वो घुमा फिरा के अपने नाक को कान अपने नाक को घुमा के पकड़ के, टांग से पकड़ के, कैसे भी करके वो उसको कहते हैं कि साहब की ये राइट टू लाइफ में है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऐसा कहती है। ये भी आपने देखा है, ये क्या नाटक है? ये केजरीवाल को बचाने का तरीका है।
सर, ये ओवरऑल अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे प्रोसेस में जो इस समय चल रहा है, और एक बात तो है सर, हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी समथिंग कॉल्ड डिस्क्रिशन, यू लीव इट टू द जजमेंट और द विजडम ऑफ अ पर्सन। अब जहां उनको लगता है, अब जैसे बाबा रामदेव का केस है, अब वहां पे अगर आप ये कहते हैं कि भाई बाबा रामदेव ने ऐड कर दिया, उसको आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले लिया, ठीक है, हेट स्पीच जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुओ वोटो कॉग्निजेंस लें और सनातन को गाली दे दी और उस पे मुद्दा बन गया, उस पे सुप्रीम कोर्ट खामोश है, उस पे कंटेम्प्ट इशू नहीं बनता। जबकि वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था बाबा के केस में ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करेगा और जो गलत कानून के खिलाफ एडवर्टाइजमेंट करेगा उसको कंटेम्प्ट ले लेंगे। लेकिन वहां तो सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट था कि अगर आपने अगर कहीं पे भी हेट स्पीच दी किसी भी धर्म के खिलाफ तो उसपे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी और लोकल पुलिस ऑफिसर्स पे कार्रवाई होगी। क्या हुआ सर आज तक? तो ये जो अप्रोच है सुप्रीम कोर्ट की, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ी करती है, क्योंकि जिस तरह से ये फ्लिप फ्लैप अप्रोच होती है, देखिए आज का जमाना सर वो नहीं है जो 10 साल पहले था। आज सोशल मीडिया का जमाना है, पहले जजेस के पास ये अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर को इस्तेमाल करें और जनता को सरमन दे दें कि सर ये गलत है वो सही है, हम सुप्रीम कोर्ट में बैठ के आपको बताएंगे। आज तो लाइव टेलीकास्ट होता है और लाइव ही लोगों का रिएक्शन भी आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सही नहीं किया, गलत किया। अब ये पब्लिक ओपिनियन है, एक तरफ जजेस कह सकते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिक ओपिनियन का, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है सर? डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तब आप क्या कहेंगे उस बात को? तो ये मुद्दे हैं सर जिसको मुझे लगता है कि कोई कुछ भी बोले लेकिन आफ्टरऑल फर्क तो इन चीजों का पड़ता है। और रही बात इस केजरीवाल के मुद्दे को लेके, फिर वही बात आती है, आज सोशल मीडिया में चर्चा किस बात की है कि हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेज दिया।
आप एक मिनट, थोड़ा आपकी इमेज जो है वो फ्रीज हो गई है, तो एक बार
एक
जरा
मिनट सर।
रिफ्रेश कर लीजिए।
ओके
तो रिफ्रेश करने से ठीक हो जाएगी।
आप कैरी ऑन करिए सर, मैं थोड़ा सा टेक्निकल शायद हैंग हो रहा हूँ।
तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बात तो हम केजरीवाल के केस की भी पूरी करेंगे, आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम बहुत टेक्निकल इश्यू पे चले गए, लेकिन जो एक बात जो है ना, ये कोर्ट्स जो बात करते हैं घुमा फिरा के कि साहब हम मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी, सोशल मोरालिटी, और साहब हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाले हैं, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाले सिद्धांत को बहुत चैलेंज किया है, और वो ये कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रिंसिपल जो है वो कोर्ट्स जो है वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपना स्कोप बढ़ाने के लिए, अपना ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाने के लिए उपयोग में ला रहे हैं। लेकिन वो वैसे तो बात करेंगे, लेकिन जहां पर वाकई कोई हार्ड डिसीजन लेना होता है वहां नहीं लेंगे, और जहां पर कोई, आप देख रहे हैं हमारे एक जज साहब का जो चल रहा है, उन्होंने किस तरह से, किस तरह की भाषा में उपयोग में लाई, अभी उस पर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये इशू तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है कि हमारे कोर्ट्स जो है, विशेषकर मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, इसमें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा निर्णय दिया गया है, लेकिन कोई भी कुछ कह के, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करके कोई भी चीज जो है उसको सही बना लेता है। ये एक आर्बिट्रेरीनेस जो है वो हमारी लीगल फंक्शनिंग में, जुडिशियल फंक्शनिंग में आई हुई है, और उसका निराकरण अत्यंत आवश्यक है। हम लगातार देख रहे हैं कि जहां भी ये लेफ्टिस्ट वकीलों का गैंग खड़ा हो जाता है, वहां पर कोर्ट्स के पैर कांपने लगते हैं और वो किसी भी तरह का उल्टा सीधा निर्णय ले जाते हैं। प्रशांत भूषण का केस याद कीजिए, प्रशांत भूषण को कन्विक्ट किया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, और उसके बाद कन्विक्शन करने के बाद क्या किया, एक रुपए का फाइन। इसी तरह सुब्रत राय सहारा को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसमें मैक्सिमम 3 महीने की सजा है, और सुब्रत राय सहारा को कहा कि आप तब तक जेल में रहेंगे जब तक कि आप पैसा नहीं दे देते। कौन सा नियम, कौन सा कायदा, कौन सा कानून, कुछ नहीं, स्वेच्छाचारिता की पूरी पराकाष्ठा है।
सर वॉइस जी, नहीं आ रही जी, आपकी।
हाँ हेलो हेलो हेलो
जी,
तो मैं कुछ इनके जो है वो कंटेम्प्ट केस डिस्कस कर रहा था जो प्रशांत भूषण को इन्होंने 1 रुपए का फाइन देके कन्विक्शन के बाद भी छोड़ दिया था, और उसके तुलना कीजिए सुब्रत राय सहारा वाले केस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में 3 महीने की सजा है और उसको उन्होंने परमानेंट जेल में रख दिया था।
नहीं, ये तो सर देखिए डिस्क्रिशन है, उसका जस्टिफिकेशन भी
जजेस, ये डिस्क्रिशन वाली जो बात है ना, फिर मैं इस पर आपत्ति करूंगा, क्योंकि डिस्क्रिशन जो है ये डिफाइंड है, ये बहुत पुराना केस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फॉलो किया है, इट इज ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट। उसका नाम है शार्प वर्सेस वेकफील्ड, 1886 हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कहता है कि डिस्क्रिशन इज नॉट प्राइवेट ओपिनियन, डिस्क्रिशन हैज टू बी लीगल एंड रेगुलर, लेकिन हमारे जजेस जो है उसको प्योरली प्राइवेट ओपिनियन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जी
सर, बात सर वहीं आ जाती है कि देखिए इस समय जो जुडिशरी के ऊपर भी जो इशू आ रहा है बार बार, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक बार कहा भी था और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इस समय जुडिशरी पे सोशल मीडिया इतना वोकल क्यों है। पहले तो शायद जब सोशल मीडिया नहीं था तो हर आदमी को, हर पॉलिटिशियन को, हर पार्लियामेंटेरियन को लगता था वो सुप्रीम है। आज स्थिति है कि वो जनता से भागते फिर रहे, और यही कारण है कि आज की तारीख में अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं शायद जुडिशरी पे वो प्रेशर नहीं बिल्ड हुआ है कि आपके हर डिसीजन को, हर निर्णय को जनता पब्लिकली स्क्रूटनाइज करती है और उस पर कमेंट करती है, सही है या गलत। जैसा अक्सर कहा जाता है कि देखिए अगर आप जस्टिस कर भी रहे तो जस्टिस दिखना भी चाहिए।
Exactly.
इस समय जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, केजरीवाल का मुद्दा अगर हम ले, जिस पे आज हॉट टॉपिक है, करप्शन को लेके, एक तरफ हम बात कर रहे हैं करप्शन की, केजरीवाल के अगर आप आर्ग्यूमेंट देखें हाई कोर्ट में, उसमें तो जैसे आज का ही अगर मेरा वीडियो है, दर्शक चाहे तो देख सकते हैं कि केजरीवाल ने तो इनडायरेक्टली कोर्ट को यही कह दिया कि साहब जिस कानून की आप बात कर रहे हो वो तो मेरे पे लागू ही नहीं होते। आपने समन की बात करी, मैंने समन को चिट्ठी दे दी, मैंने तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बोला है कि आप मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर लो, आपको प्रॉब्लम है आप मुझे क्वेश्चनर भेजो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मतलब केजरीवाल अपने रूल खुद डिफाइन कर रहे हैं एज ए एक्यूज्ड और एज ए पर्सन हुई सस्पेक्ट। तो यहाँ तो पूरी की पूरी कहानी ये है कि केजरीवाल कह रहे हैं साहब आपने कोई नया एविडेंस इकट्ठा ही नहीं किया। अब जब आप समन में जा ही नहीं रहे, आपके साथ कोई पूछताछ करना चाहता है आपके, तो मैं आऊंगा ही नहीं, और फिर आप कोर्ट में जाके बोलते हो कि साहब आपने तो मेरे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा ही नहीं किया, आपको अरेस्ट करने से पहले कम से मेरा स्टेटमेंट तो लेना चाहिए था। और 9 बार जब समन भेजा तो वो क्या भाई आपको क्या चाय बुलाया, पीने के लिए बुलाया था, आपके स्टेटमेंट के लिए ही बुलाया था, आप आए नहीं, और फिर कोर्ट में खड़े होकर आप बोलते हो कि साहब आपने मेरा स्टेटमेंट लिया ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है सर कि केजरीवाल ने तो बहुत क्लियरली बोल दिया है अदालतों को कि जिस कानून को लेके आप बैठे हो ना इस पे मेरे लागू नहीं होता है, ये आम आदमी के कानून है, मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूं, मैं खास हूं, तो आप मुझे आम आदमी मत समझो। तो ये बात बहुत क्लियरली उन्होंने कह दी। अब सोशल मीडिया किस बात को लेके आज की तारीख में आर्ग्यूमेंट कर रहा है? सोशल मीडिया ये कह रहा है कि भाई साहब, अगर हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेज दिया तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा क्या? सुप्रीम 90% लोगों के कमेंट जो मेरे पास आए वो ये कहते हैं कि साहब आप क्यों इतना इस बात पे विचलित हो रहे हैं, अभी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर देगा, उनको रिहा कर देगा। अब ये जो पब्लिक ओपिनियन है टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट, ये क्यों बिल्ड हो रही है? अभी हालांकि वो डिसीजन नहीं आया है, लेकिन इस तरह की पब्लिक ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्यों बिल्ड हो रही है, ये अपने आप एक मुझे लगता है कि बार और बेंच दोनों में इस पर चर्चा होनी चाहिए।
जी, अब आ जाते हैं जरा केजरीवाल के केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये केजरीवाल का जो केस है, ये तो आपको लगता नहीं कि ये फंस गए रिट पिटीशन में जाके?
ऑप्शन नहीं था सर। देखिए, अगर आप इस समय पीएमएलए कानून देखते हैं, अब अरेस्ट ये हुए, इनफैक्ट तीन ऑप्शन इनके पास थे। सबसे पहले अगर इनको ये थ्रेट था कि मैं जाऊंगा तो अरेस्ट हो जाऊंगा, तो इनको प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब ये प्री नहीं, उसके अलावा एक और आर्ग्यूमेंट है सर इस पूरे खेल में, अगर आप प्री अरेस्ट बेल के लिए जाते हैं तो वहां सवाल ये आता है कि क्रिमिनल तो है नहीं, तो आप प्री अरेस्ट बेल लेने क्यों आए? आपको क्या क्रिमिनल डिक्लेयर किया है, क्या आपको उन्होंने कोई वारंट इश्यू किया है, या आपके ऊपर अरेस्ट की कोई खतरा लटक रहा है? तो जब आप गए ही नहीं तो आप कैसे मान रहे हो कि आप क्रिमिनल है, तो आप पहले जाओ तो सही। अब इंटरेस्टिंग चीज ये आ जाती है कि केजरीवाल साहब या तो खुद को एक्यूज्ड मान ले और प्री अरेस्ट बेल ले, वो चाहते नहीं थे, और अगर वो नहीं है तो सीधी सी बात है कोर्ट कहता देखिए अभी ये टाइम नहीं आया है, आप अभी जाइए और ईडी के सामने अपीयर होइए। ये पहला मुद्दा निकल के आता। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो आता है, जो अब ये है कि उन्होंने बेल के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया। पीएमएलए एक्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको इसलिए बेल नहीं इस समय दी जा सकती, उसके लिए ईडी का कंसेंट जरूरी है। अगर ईडी ने बोला कि नहीं ये आदमी खतरा है, ये टेम्परिंग कर सकता है, और उसका अपोज करते तो कोर्ट बेल नहीं देती। तो इनको लगा कि वहां भी ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन ये था कि इस पूरी कार्रवाई को ही निरस्त घोषित किया जाए, और जो उन्होंने किया, और यही अप्रोच लेके वो कोर्ट गए, और कोर्ट में जो हुआ वो अब उनके सामने।
मैं जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, पीएमएलए में इनकी बेल जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, रिमांड कर दिया था। तो सेकंड बेल के लिए कितना टाइम पीएमएलए के अंतर्गत मिलता है?
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इनजस्टिस हुआ है तो आप दौड़ के हाई कोर्ट जाओगे। अब जैसे हाई कोर्ट में इनको नहीं मिला तो दौड़ के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए,
तो फंडामेंटल राइट है। ये तो एक बार पहले पहुंच गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए कि साहब ये प्रोसेस इलीगल है, और कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
समझ चुके ना ये कि भाई अब कोर्ट भी तो यही कहेगा कि भाई देखिए कोर्ट पे भी इस बात का प्रेशर है कि आप सीधे के सीधे उठ के पहुंच जाते हो यहाँ पे, कि अगर आप वीआईपी हो, आप अगर चीफ मिनिस्टर हो, तो क्या आप लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं कराओगे? आप ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट सब इग्नोर करके सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे जस्ट बिकॉज यू हैव एक्सपेंसिव एंड नोन वकील? इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टम काम नहीं करेगा? तो इनको लगा कि वहां पे झाड़ पड़ेगी, जो थोड़ी बहुत होप है वो मुश्किल हो जाएगी, और उसका मैसेज लोअर जुडिशरी पे जाएगा कि भाई आप यू गो बाय द प्रोसेस। तो इनके लिए शायद प्रेशर बढ़ सकता था, तो इसलिए इन्होंने स्मार्टनेस ये करी कि हटा लिया वहां से। फिर ये गए लोअर कोर्ट, मतलब ट्रायल कोर्ट, फिर वहां से हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से अभी पहुंच गए दोबारा। तो सर्कल तो कंप्लीट कर लिया है इन्होंने।
एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे, आप तो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहते हैं, यहाँ पर इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की, तो रिट पिटीशन के लिए जो दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स हैं वो रिट पिटीशन से फिर लेटर पेटेंट अपील या रिट अपील जिसको बोलते हैं वो अलाउड है रिट पिटीशन का? तो उसको फोरगो करके ये सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों गया 136 में?
फंडामेंटल राइट्स को लेके जाएंगे ना सर, क्योंकि इनको ये है कि इस समय मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो है इस समय कैंपेन करने का। जो बार बार इनका जो एक आर्ग्यूमेंट है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड एज ए पॉलिटिशियन, कि देखिए इलेक्शन टाइम है, अगर मैं अभी जाके कैंपेन नहीं किया, और एज ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में चुनाव एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है, मैं पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं, मेरे को अगर कैंपेन करने आपने नहीं दिया तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में आ जाता है और मैं डेमोक्रेसी के लिए इररिलेवेंट ना हो जाऊं। तो ये उस एंगल को सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे कि साहब देखिए आप हमें बाहर निकालिए ताकि हम डेमोक्रेसी को बचा सकें, इनका आर्ग्यूमेंट वो है, और हमारे अलावा डेमोक्रेसी कोई नहीं बचा सकता क्योंकि मोदी साहब तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हटाने के चक्कर में, यही तो पूरा अपोजिशन कह रहा है, और यही तो था कि भाई आजादी बचाओ, इंडिपेंडेंस बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, यही करके तो ये रैलियां कर रहे हैं पूरे देश में, और करके इनके पास और तो कोई डेवलपमेंट प्लान है नहीं। अब आप बताइए इनमें से किसी ने बोला कि हम देश को इलिटरेट बनाएंगे या हम देश में कोई मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथन करेंगे या कुछ और हम डेवलपमेंट करेंगे, R&D पे फोकस करेंगे। अब चुनाव आने वाले हैं, एक हफ्ता रह गया टेक्निकली। अब आप मुझे बताइए सर अपोजिशन का एजेंडा क्या है, मुद्दा ये हो गया। तो अब ये सिर्फ डेमोक्रेसी और संविधान बचाने निकले और उनको ये उम्मीद है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में देंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि भाई मेरा काम भी संविधान बचाना है और ये लोग भी संविधान बचाने निकले हैं, तो शायद
लेकिन जो समस्या जो आने वाली है वो आने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ये तो पूछेगा ही ना, जैसा कि वो आजकल हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस जो है वो कहती है कि आपने हाई कोर्ट में रेमेडी क्यों नहीं अवेल की, कि भाई आपके पास एक रेमेडी है जाइए, यहाँ क्यों आया डायरेक्ट?
सर मैं वही कह रहा हूँ, ये दोनों इशू को लेके आएंगे, टाइमलीनेस को लेके आएंगे, दूसरा फंडामेंटल राइट्स को लेके आएंगे, ये केस बिल्ड करेंगे किसी ना किसी तरह, इनकी हियरिंग इनको चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और पूरा एजेंडा वही है सर, किसी तरह से जेल से बाहर निकले। और सवाल इस बात का है क्योंकि अब आप जेल में है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अब पब्लिक डोमेन में है, इनको ये पता है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, अब ये बाहर निकल के क्या करेंगे? अब आप सोच लीजिए, आपको क्या लगता है, इनको भी पता है कि इनको कोई चुनाव जीतने का कोई मौका बचा नहीं, फंडिंग इनके पास जितनी होगी सब पे अब ईडी की और CBI की निगाह होगी कि कहां से आ रहा है, कौन पैसा दे रहा है, तो सबके ऊपर अब इशू है, कौन लोग इनको एक्सटेंड करेंगे सपोर्ट अब किसी को नहीं पता, विद इन पार्टी कौन करेगा नहीं पता, क्योंकि एक बार तो आपके ऊपर दाग लग गया कन्विक्शन का, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। अब सवाल इस बात को लेके आता है कि ये बाहर निकल के सबसे पहले उन एविडेंसेस को तो नहीं मिटाएंगे जो इनको लगता है कि शायद ईडी के हाथ में नहीं लगे होंगे। अभी तक जैसे अपना मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया इन्होंने, ऐसे हो सकते हैं कि बहुत सारी कहीं हार्ड डिस्क छुपा के रखी हो, लैपटॉप छुपा के रखे हो, बाकी मोबाइल कहीं किसी कोने में दबा के रखा हो जिसके ऊपर अभी तक हाथ नहीं पड़ा हो ईडी या CBI का, तो वो भी तो एविडेंसेस बाकी हैं बाहर, तो कहीं वो ना डिस्ट्रॉय हो जाए। तो कई कारण हैं, क्योंकि फिर उसके ऊपर आके फिर कोर्ट और लीगल प्रोसेस पे और सरकार के ऊपर लांछन लगाना कि साहब देखिए मोदी हमें बर्बाद करने में लगा हुआ, संजय सिंह ने क्या शुरू किया बाहर निकल के, तो ये सब मिल जाएंगे। फिर अगर इनको देंगे तो फिर ये कहेंगे साहब सिसोदिया साहब भी एप्लीकेशन लगा के बैठ गए कि मेरे को भी चुनाव कैंपेन करना है क्योंकि मैं दूसरा बड़ा नेता हूं। फिर सत्येंद्र जैन पहुंच जाएंगे कि साहब मैं भी नेता हूं, मुझे भी चुनाव करना है, मेरा आप अधिकार कैसे रोक सकते। तो कुल मिला के अगर एक प्रेसिडेंस क्रिएट हो जाता, हालांकि एक बार पहले ऐसे जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेनिंग इज अ फंडामेंटल राइट, अब अगर इस बार भी सुप्रीम कोर्ट अगर वही रुख अपनाता है तो इन फ्यूचर इलेक्शन के आसपास जितने भी पॉलिटिशियन जेल में हैं सब यही कह के बाहर आ जाएंगे कि साहब प्रेसिडेंस है, आपने केजरीवाल को छोड़ा था, हमने क्या गलती करी है, उन्होंने भी करप्शन की थी, हमने भी किया है, उनको छोड़ा था, हमें भी छोड़ दो, तो एक नया इंटरेस्टिंग दौर निकलेगा, आप देखते हैं।
अच्छा अब इसमें जो है दूसरी समस्या और आ गई है, वो ये है कि अब वो भी कूद पड़े हैं CBI वाले।
नहीं, केस तो CBI से ही शुरू हुआ था ना सर, अगर आप इस केस का जेनेसिस देखें मेरा मैंने एक सीरीज बनाई है, ये पूरा जो केजरीवाल जब अरेस्ट हुआ है इसके बाद मेरे वीडियो में मेरे मेरे चैनल पे पार्ट वन अगर आप देखें, पार्ट वन और पार्ट टू, उसमें मैंने बहुत क्लियरली यही कहा है कि ये पूरा ईडी का चक्कर शुरू कैसे हुआ। एक्चुअली ये केस था सीबीआई का, और सीबीआई का केस शुरू हुआ था जो चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी थी एलजी को कि साहब ये जो पॉलिसी बनी है एक्साइज पॉलिसी, ये घपला है, इसमें करप्शन हुआ है, इसमें कुछ लोगों को एडजस्ट करके अनऑथराइज्ड गेन के लिए ये पूरा नाटक रचा गया है। क्योंकि जो एक्सपर्ट कमेटी, जो ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट थी एक्साइज कमिश्नर के तहत, उस रिपोर्ट की सारी रिकमेंडेशंस को इन्होंने इग्नोर कर दिया। जब वो रिपोर्ट एलजी के पास गई तो एलजी ने उसको एज ए इश्यू ऑफ करप्शन मानते हुए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी दी थी। और जब वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें जब करप्शन का मामला सामने आया, तब ये बात सामने आई कि इसमें क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, करप्शन इन्वॉल्व है, तो ये मुद्दा घूम फिर के फिर आता है ईडी का रोल। तो ईडी की एंट्री हुई बिकॉज ऑफ सीबीआई। तो ईडी तो शुरू से इस केस को मैनेज कर रही है, क्योंकि मामला करप्शन का था, लेकिन करप्शन में क्योंकि मनी इन्वॉल्व था, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में, हवाला के रूप में, तब जाके ये पूरा मामला पहुंचा करीब ईडी के पास। तो इस तरह से ये है। और अब जो कविता के ऊपर जैसे दोबारा सीबीआई ने कस्टडी ली है, उसमें वो करप्शन के एंगल की जांच करेंगे कि आपको जो पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में जो घपला हुआ उसमें रोल क्या था, ये उस एंगल से इन्वेस्टिगेट करेंगे टू स्टेब्लिश करप्शन। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल विल बी स्टेब्लिश्ड बाय ईडी, करप्शन एंगल विल बी स्टेब्लिश्ड बाय सीबीआई। सो ये एक दोनों एजेंसीज का रोल इस पूरे केस में।
तो अब आप ये बताएं कि इसके जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस आप देख रहे हैं, हमने वैसे पहले भी बात की थी कि संजय सिंह के छूटने के बाद से अचानक जो है वो सुनीता केजरीवाल नेपथ्य में चली गई हैं, और आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी डाउन हो गए हैं। तो ये जो है केजरीवाल को सूट करता है क्या? भगवंत मान और संजय सिंह की मुलाकात यदि आपने देखी हो तो वो दोनों कितने प्रफुल्लित दिख रहे थे।
देखिए सर, दोनों को ये एक फ्रीडम मिल गया है, क्योंकि दोनों के ऊपर केजरीवाल का साया था, अब वो साया उनको छटता हुआ दिख रहा है। और भगवंत, मैं तो सर आप आज क्या, मैं तो 6 महीने पहले से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पंजाब इनको दिल्ली के झंझट से बच के अपना, क्योंकि वहां पे ये अपना पार्टी चला रहे हैं, इनके अपने एमएलए हैं, चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट है, सब कुछ, और कोई भी इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और यहां तक कि बहुत बार बीच में खबर आई थी कि भगवंत मान इज फॉलोइंग द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ बॉर्डर स्टेट एंड सिक्योरिटी रीजंस, तो वो सही सेंसिबल कदम था भगवंत मान का। मुझे आज भी, मैं कह रहा हूं जो मैं 6 महीने पहले कह रहा था, कि आम आदमी पार्टी पंजाब के नाम से इनको एक नया रीजनल ग्रुप बना लेना चाहिए, और पूरा फोकस करना चाहिए पंजाब की गवर्नेंस को लेके, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको भगवंत मान को एड्रेस करना है। और चाहे वो एग्रीकल्चर का इश्यू हो, वाटर टेबल का इश्यू हो, एनवायरमेंट का हो, वहां के लॉलेसनेस का हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, काफी मुद्दे हैं पंजाब में इस समय। और जब तक वो उसको फोकस नहीं करेंगे, भगवंत मान सरकार फिर या तो कांग्रेस के लिए रास्ता साफ करेगी, या धीरे धीरे बीजेपी का वहां बेस बिल्ड होगा। अर्बन इंडिया में तो था ही, रूरल इंडिया वाज अ चैलेंज फॉर बीजेपी, रूरल पंजाब वाज चैलेंज फॉर बीजेपी। वहां पे अब क्योंकि अकाली उनके साथ नहीं है, हो सकता है कि अगला चुनाव आम आदमी पार्टी पंजाब और बीजेपी मिलकर लड़ सके। कांग्रेस और अकाली को बाहर अगर रखना हो तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और मेरा ये मानना है कि आज भी भगवंत मान को दिल्ली की पॉलिटिक्स को छोड़ देना चाहिए, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में वैसे भी कुछ नहीं है, सिर्फ केजरीवाल को अपनी कुर्सी बचाने का खेल खेलना है, बाकी दिल्ली इज एज गुड एज म्यूनिसपैलिटी, तो उसके लिए कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप पंजाब को पर फोकस करिए, पंजाब के रिसोर्सेज वैसे ही लिमिटेड हैं, चैलेंजेस ज्यादा हैं, अच्छा काम करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, और हो सकता है कि दोनों पार्टियों में अगर इक्वेशन बैठ जाए तो आने वाले समय में बीजेपी और आम आदमी पंजाब मिलके शायद पंजाब के अंदर डबल इंजन की सरकार दे सकते हैं। और मेरा ये मानना
ये,
है
ये ये आपने बहुत ही नए तरह का एंगल लिया है उसके लिए तो
हाँ, मुझे
आम आदमी पार्टी भगवंत मान अलग बननी पड़ेगी।
मैं वही कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी पंजाब करके इनको एक नया रीजनल ग्रुप बनाना चाहिए और इस समय इनके पास पार्टी है और इनको करना क्या है, इनको रेजोल्यूशन पास करना है। अब सारे के सारे अगर उस रेजोल्यूशन को एंडोर्स कर देते हैं तो ये भी नहीं कह सकते कि साहब ये डिफेक्शन लॉ लगेगा, ये भी नहीं हो सकता। और रही बात की अप्लाई करें कि बिकॉज ऑफ करप्शन रीजंस, बिकॉज देयर इज नो लीडरशिप, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द पार्टी, वी आर स्प्लिटिंग, और एक एमिकेबली बगैर झगड़ा की अपना काम पे फोकस करें। तो ये आम आदमी पार्टी पंजाब को करना चाहिए, दिल्ली को छोड़ दें अपने हाल पे, क्योंकि दिल्ली का गवर्नेंस वैसे भी एलजी संभाल लेंगे और यहाँ पे आम आदमी पार्टी का वैसे भी एमसीडी में अभी रोल है, तो एमसीडी नाली साफ करवा देगी, सड़कें साफ करवा देगी और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो एलजी देख लेंगे। तो ये सब करके दिल्ली भी मैनेज हो जाएगा, पंजाब भी मैनेज हो जाएगा। जो अभी केजरीवाल की महत्वाकांक्षा के कारण ये जो जबरदस्ती की एक महाभारत करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सबका अटेंशन, टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रही है, इसको इग्नोर करना जरूरी है, तो मेरा ये मानना है। और ये डुएबल है, ये मुश्किल नहीं है।
ओके, लेकिन वही वाली बात हुई ना जो मैं कह रहा हूँ कि वो 100% की बात वही आ गई कि पहले भगवंत मान जो है वो अपना रास्ता अलग करें केजरीवाल से, तभी ये संभव है। लेकिन यदि अलग कर लेते हैं तो संभव हो सकता है, ये भी बात है।
नहीं, केजरीवाल के साथ जुड़ के उनको मिलना क्या है सर, लेट्स पुट द अदर वे राउंड। केजरीवाल अदर देन मॉरल सपोर्ट, अगर आप ये कहें भगवंत मान बीइंग ए लॉयल सोल्जर, वो कहेंगे नहीं जी केजरीवाल मेरा नेता है, मैं तो उसी के साथ रहूंगा। चलिए आप नेतागिरी कर लीजिए, अपने पर्सनल इक्वेशन को मैनेज कर लीजिए, क्या इससे पंजाब का हित होगा? मेरा सवाल बहुत सिंपल है, क्या आप जिस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, इज दिस गुड फॉर पंजाब? पंजाब की पॉलिटिकल सिस्टम ने, वहां की पॉपुलेशन ने आपको जिताया है, केजरीवाल को नहीं जिताया, आपके एमएलए जीत के भेजे हैं, आपको पंजाब के वेलफेयर के बारे में सोचना है। अगर केजरीवाल ने गलत काम किया है और कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है तो इसमें आप अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? और जहां तक बात है सारे पंजाब के राज्यसभा एमपी, वो तो सब साइडलाइन हो गए, वो तो कोई इनका साथ नहीं दे रहा,
एक भी नहीं दे रहा, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है।
तो इसका मतलब ये
है, और सात में से एक ने भी इनका साथ नहीं दिया।
तो मैं वही कह रहा हूं, तो पंजाब के जब राज्यसभा एमपी साथ नहीं दे रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं कि भाई हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, वी आर बियॉन्ड पॉलिटिक्स, तो आप भी बियॉन्ड पॉलिटिक्स होगे, डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे फोकस करिए ना, आप जबरदस्ती क्यों हमदर्दी बता खा रहे हैं? हाँ, आप दोस्ती रखिए, लेकिन जब गवर्नेंस की बात आती है, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जो चीफ मिनिस्टर, आपकी जो जिम्मेवारी है स्टेट की, उसको देखिए कि वो बेस्ट सॉल्यूशन, उसका क्या ऑप्शन है। केजरीवाल के साथ रोज दिल्ली में प्रदर्शन करना आपके पंजाब के हित में है, या केजरीवाल को बोले यार आपको जो शोर मचाना है मचाइए, हम आम आदमी पार्टी पंजाब है, आप आम आदमी पार्टी दिल्ली बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो नाम रखना है रखो, ऑल इंडिया रखो, जो करना है करो, हमें पंजाब पे फोकस करना है, और जब मिलके काम करना होगा तो हम पंजाब में मिलके काम करेंगे, क्या दिक्कत है।
और इसमें ये भी हो सकता है, भगवंत मान अलग पार्टी बना ले,
पार्टी बनी हुई है सर, नाम ही तो बदलना है,
या इसी इसी पार्टी के ऊपर कब्जा कर ले।
मैंने कहा ना सर कि आपको कुछ नहीं करना, आम आदमी पार्टी ब्रैकेट में पंजाब, जनता दल के कितने बने थे सर पार्ट, जनता दल सेक्युलर, जनता दल दिस, जनता दल दैट, जनता दल ये वो सब करके बने थे ना। कांग्रेस कितनी बनी थी सर, हर स्टेट में एक नई कांग्रेस थी, वो क्या हुआ था, वो रीजनल जो नेता थे सब अलग हो गए जब उनको लगा कि नहीं मेन पार्टी में हमारा गुजारा नहीं है, तो सबने कांग्रेस, किसी ने एस बनाई, किसी ने ए बनाई, किसी ने बी बनाई, और चलता रहा। तो ये सब पॉसिबल है। तो जब कांग्रेस में ऐसा हुआ, जनता दल में ऐसा हुआ, तो आम आदमी पार्टी में कौन सी नई बात है सर, यहां भी हो जाएगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के एमएलएज हैं उनको एक साथ बैठ के भगवंत मान को खुल के चर्चा करनी पड़ेगी कि यार हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है वो क्राइसिस में है, और हम अगर वहां पे एनर्जी वेस्ट करते हैं तो पंजाब का डेवलपमेंट पिछड़ता है, हम क्या करें? हमें पहले ये बताओ, क्या हम पंजाब आम आदमी पार्टी पंजाब के रूप में रजिस्टर करें? तो उसमें आपको कुछ बदलना नहीं होगा, सिर्फ एक नॉमनक्लेचर में डेविएशन है। और अगर आपको पंजाब आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ और नया नाम डालना है वो आप भी डाल सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं है सर। क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या देखेगा, आपके स्टेट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टिवली क्या डिसीजन ले रहे हैं, और अगर मेजोरिटी, और वैसे भी सर पंजाब के अंदर जो एमएलएज हैं, आप शिवसेना का केस देख लीजिए ना, शिवसेना के केस में क्या हुआ, पार्टी स्प्लिट हुई, नई पार्टी भी शिवसेना के नाम से ही सत्ता में आई, फिर सिंबल को लेके झगड़ा हुआ। तो यहां क्या प्रॉब्लम है, यहां झगड़ा करना ही नहीं आपको, यहां तो कोई फाइट है नहीं, सही बात की भाई आम आदमी पार्टी हमने रजिस्टर कर ली और पंजाब के लिए आप चाहे कोई भी नया सिंबल लेके अपना कर लो, दिक्कत कहां है आपको, मुझे तो नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इश्यू है भाई, झाड़ू ना रखे ब्रश रख लेना, क्या प्रॉब्लम है
वो रख लेना, क्या वो
वैक्यूम क्लीनर रख लो, क्या दिक्कत,
झाड़ू की जगह वाइपर रख लो, आजकल वाइपर आता है,
वाइपर आता है, वैक्यूम क्लीनर रख लो, कुछ भी रख लो, क्या
एक और पॉइंट है इसमें कि वो खालिस्तानियों का क्या होगा, ये जीते तो खालिस्तानियों की सपोर्ट भी काफी थी उसमें, हालांकि इनको हिंदुओं ने भी वोट दिया था लेकिन खालिस्तानियों ने इनको फंड भी दिया था और काफी सपोर्ट भी किया था।
देखिए सर खालिस्तानी चैप्टर तो आपको पता है, इंटरनेशनल लेवल पे इनके जितने भी बड़े लोग थे वो सब पहुंच गए जहां सबको जाना है एक दिन। कहने का मतलब है सर कि ये जहां तक खालिस्तानियों की बात है, ये पता लग गया होगा अभी तक भगवंत मान को इतनी ब्रीफिंग सिक्योरिटी एजेंसीज ने दे दी होगी कि देखो डोंट क्रॉस द लाइन, नहीं तो प्रेसिडेंट रूल भी लग जाएगा, क्योंकि बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज विल नॉट टॉलरेट, इवन पंजाब की जनता विल नॉट टॉलरेट एनी रिसर्जेंस ऑफ खालिस्तान, कोई नहीं चाहेगा। अब आपने नहीं लिया पैसा, हो सकता है कि वो डील केजरीवाल के साथ थी, तो केजरीवाल तो जेल में है क्योंकि पन्नू ने तो केजरीवाल का नाम लिया, ये थोड़ी कहा भगवंत मान को मैंने पैसे दिए, उसने तो कहा कि केजरीवाल को हमने $16 मिलियन दिए। अब केजरीवाल जेल में है, भगवंत मान कैन स्टार्ट फ्रॉम ए क्लीन स्लेट। अब वो रही बात की साहब अब उनका क्या होगा, अगर चुनाव हुए तो अब दोबारा कौन आएगा? अब सवाल ये है कि अगर खालिस्तान इतना बड़ा फैक्टर है पंजाब में, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अकाली खालिस्तान के साथ मिलकर चुनाव को इन्फ्लुएंस करेंगे, या कांग्रेस खालिस्तान के साथ मिलकर करेगी, या बीजेपी खालिस्तान के साथ मिलकर करेंगे, या वापस भगवंत मान खालिस्तान के साथ हाथ मिला के काम करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि वो मार्जिनलाइज फैक्टर है, उस पर आप परेशान मत होइए। मुझे तो ये लगता है कि भगवंत मान को खुल के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करनी चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बात करनी चाहिए कि साहब इस तरह के थ्रेट परसेप्शंस हमारे को दिख रहे हैं, ये हमारी रिपोर्ट्स कह रही हैं पुलिस की और बाकी हमारी स्टेट इंटेलिजेंस की, लोगों का फीडबैक ये कह रहा है, अब बताइए इसको कैसे मैनेज करना है, आप क्या जिम्मेवारी लेंगे और हमको क्या करना है, लेट्स रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, आफ्टर ऑल नेशनल इंटरेस्ट की बात है ना, इसमें कोई पंजाब तो अकेला है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ रोल, और फिर खालिस्तान इज ए इंटरनेशनल फैक्टर इन पंजाब पॉलिटिक्स, और जब इंटरनेशनल फैक्टर की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है दैट इशू कैन बी रिजॉल्व्ड, और इतना इमेच्योर बिहेवियर भगवत मान करेंगे नहीं, और अगर इन्होंने जरूरत से ज्यादा किया और वो बहुत अपेरेंट हो गया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 कब इस्तेमाल होगा, तभी भी हो सकता है, तो अपनी मुझे लगता है कि इस बात को समझते होंगे, तो ऐसी वो इमेच्योर हरकत नहीं करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब और बीजेपी पंजाब के डेवलपमेंट पे मिलके काम करें तो दैट विल बी बेटर देन कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर अकाली और कांग्रेस।
और हमारे जो तथाकथित किसान लॉबी है पंजाब की, वो कहाँ बैठी है सर?
वो तो कहीं नहीं है सर, वो तो खत्म हो गया खेल, वो तो जबरदस्ती बीच बीच में उनको उछलने की आदत है, कारण बहुत है सर। एक तो देखिए पंजाब को वैसे भी कोई इशू नहीं है, सारा प्रोक्योरमेंट वैसे भी एफसीआई कर रही है, वीट राइस को लेके। और मेरा तो ये मानना है कि आप 2-4-5 साल और रुक जाइए, इनकी प्रोडक्शन वैसे ही कम हो जाएगी। जिस तरह से वाटर टेबल नीचे जा रहा है, पंजाब के अंदर प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस आने वाली है। ये अल्टीमेटली ये खुद ही पैड़ी नहीं उगा पाएंगे, और फिर इनका यही रोना होगा बार बार कि साहब एमएसपी बढ़ाओ, एमएसपी बढ़ाओ, क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ रहा है। और अल्टीमेटली सेंसिबल चीज यही है कि पंजाब शुड मूव टूवर्ड्स ऑयल सीड्स एंड मेज, उस पे फोकस करें। ऑयल सीड की देश को जरूरत है, मेज का मल्टीपल यूज है, इंडस्ट्रियल क्रॉप भी है, फूड क्रॉप भी है, इथेनॉल भी बन सकता है, फीड भी बन सकता है, और मेज की यील्ड ज्यादा है, पानी कम लेती है। तो मेज और ऑयल सीड पे अगर पंजाब फोकस करेगा तो बेनिफिशियल रहेगा। ये एफसीआई की जो अफीम इन्होंने चाट ली है कि हम बस कणक और जीरी उगाएंगे और एफसीआई के गर्दन उतार डाल देंगे और आराम से बैठ के हम हुक्का पिएंगे, वो नहीं चलने वाला है, वो गया जमाना। क्योंकि आपको नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो जाएंगे कि आपको प्रोडक्शन ही नहीं मिलेगा।
पंजाब के जो सबसे बड़े एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं सरदारा सिंह जी, वो तो उनको तो इन्होंने बहुत धमकाया, सब भी किया, लेकिन वो तो बिल्कुल फर्म है। वो कह रहे हैं कि पंजाब इज गोइंग टुवर्ड्स डेजर्टिफिकेशन।
हाँ, मैंने बोला ना 5 साल, मैं बोल सर आप एक बार समझिए, मैं पंजाब में बहुत काम किया, मैं तो पंजाब का फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। मैंने पंजाब में वीट के साथ साथ ऑयल सीड, जो मस्टर्ड की एक वेरायटी आती है कनोला, आप सबने साम सुना होगा, दर्शकों ने भी सुना होगा, उसकी एक वेरायटी थी। वो प्रोडक्ट, वो क्रॉप मुझे इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला था पंजाब में, मैं जब पिछली ऑर्गेनाइजेशन में था, वकालत शुरू करने से पहले की बात बता। तो वहां पे पंजाब के बीच में मैं बहुत काम करता था, तो वह अलग अलग पूरे पंजाब में घूमता था, गांव गांव जाता था, लोगों से मिलता था, समझता था इश्यूज क्या है। वाटर टेबल को लेके सर वहां पे इतनी ग्रेव सिचुएशन है कि पंजाब में 1 फीट पर मंथ के हिसाब से वाटर टेबल नीचे जा रहा है, 1 फीट पर मंथ। इसका मतलब साल में कितना हुआ, 12 फीट, और इसको अगर आप कन्वर्ट कर दो तो 4 मीटर हर साल। 5 साल में कितना हुआ सर, 20 मीटर। 20 मीटर अगर पानी नीचे चला जाता तो जमीन सूख जाती है। और मजे की बात, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूं, आप अगर यमुना के आसपास, इवन जो सतलुज के आसपास, अगर लुधियाना में आप वॉक डाउन करें, वहां पे एयरटेल के फार्म थे, वहां पे भी मैं जब एयरटेल के फार्म शुरू हुए थे, आई वॉज गिविंग माई टेक्निकल कंसल्टेंसी देयर सर, जब वो 300 एकड़ की लैंड जब एयरटेल को एलोकेट की गई थी वहां पे कल्टीवेशन के लिए, जब उन्होंने अपना रिटेलिंग बिजनेस शुरू किया था और कल्टीवेशन की बात हो रही थी सर, आप चल नहीं सकते थे, इतनी बालू जैसी मिट्टी थी, पैर एकदम धस जाते थे मिट्टी में, और वो पंजाब था, और वहां से सतलुज 100 मीटर पे, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूं। तो वहां पे कम से कम 2 साल तो एयरटेल को सिर्फ ऑर्गेनिक कंटेंट उस क्रॉप का बढ़ाना है, इस पे खर्चा करना पड़ा। तो सिचुएशन बहुत खराब है पंजाब में जमीन को लेके, लोग समझ नहीं रहे हैं। और यही किसान जो अभी एमएसपी एमएसपी एफसीआई एफसीआई कर रहे हैं, ये एक ड्रग्स के ट्रैप में है। अगर मैं ये कहूं कि एफसीआई इज ए ड्रग फॉर पंजाब, ये खुद को बर्बाद कर रहे हैं एफसीआई के चक्कर में। और इसीलिए पंजाब का यूथ या तो माइग्रेट हो रहा है, पंजाब छोड़ के जाना चाह रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वो बाहर निकलना चाह रहा है। और मैं भी पंजाब गया था, मेरी फैमिली वहां है, वहां में जब लोगों से मिला, सबने कहा कि साहब पंजाब में कोई भी अच्छा परिवार नहीं चाहता कि उसके बच्चे पंजाब में रह के अपना फ्यूचर बिल्ड करें, क्योंकि यहाँ पे ना तो एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा इतना खतरा है ड्रग्स का कि पता नहीं ये बच्चा किसकी संगत में चला जाएगा, और ड्रग्स माफिया का वहां बहुत जबरदस्त जोर है। तो हर सेंसिबल फैमिली जो अफोर्ड कर सकती है वो चाहती है कि मेरा बच्चा पंजाब छोड़ के या तो बाहर जाके पढ़े, और बाहर अगर पढ़ता है तो बाहर ही नौकरी करे, या वहां से फिर कहीं और निकल जाए। ये वहां के संभ्रांत लोगों में, जिन्होंने पूरी जिंदगी पंजाब के लिए खपा दी, ये वहां के लोगों का कहना है। मैं पर्सनली अपना बात कर रहा हूं, मेरे को किसी अखबार या न्यूज़पेपर की कटिंग की जरूरत नहीं है इस मुद्दे पर।
जी, तो चलिए अब केजरीवाल ने पंजाब को इस स्थिति में ला के छोड़ ही दिया है, तो पंजाब को अपना रास्ता अपने आप देखना ही पड़ेगा। आइए अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों पर।